सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकास के इंजन के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को भारत के समावेशी विकास के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। नवाचार और उद्यमशीलता पर बल और सरकार के निरंतर समर्थन और सहयोग से एमएसएमई विकास का महत्वपूर्ण इंजन बनकर उभरा है और भारत की जीडीपी में इनका लगभग 30%, विनिर्माण में लगभग एक तिहाई और भारतीय निर्यात में 45% से अधिक योगदान एमएसएमई क्षेत्र से आता है। देश भर में करोड़ों लोगों को ये रोजगार भी देता है।
इस क्षेत्र पर केंद्रित बजट पश्चात सेमिनार में आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के बढ़ते महत्व और इससे जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है फिक्की के पूर्व सेक्रेटरी जनरल मिस्टर दिलीप चिनॉय। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
मिस्टर चिनॉय, आपसे जानना चाहेंगे एमएसएमई क्षेत्र की क्या महत्व है हमारे पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए, पूरे देश के विकास के लिए, और इन्हें क्यों एक विकास का महत्वपूर्ण इंजन माना जा रहा है?
ये तो आपने जब जो इंट्रोड्यूस किया था ये टॉपिक, तो आपने तीन या चार महत्वपूर्ण बातें बताई थी, क्योंकि इसके कारण ही ये मीडियम एमएसएमई जो इंडस्ट्री है भारत में काफी इम्पोर्टेंट एक तरीके से अपना दायरा रखा है। तो पहले जैसे आपने कहा था 30% जीडीपी उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरा 45% से ज्यादा उसके एक्सपोर्ट्स में उनका एक भाग्य है, जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स में हो। तीसरा उसमें काफी एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें, और कई कई सेक्टर्स में तो जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो पूरी एम्प्लॉयमेंट है एमएसएमई में, उसके 45% एम्प्लॉयमेंट तो खाली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर आप देखें तो एमएसएमई की और तीन खास बात है जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। पहले जो है ये एक एमएसएमई जो है रीजनल डेवलपमेंट को एक तरीके से बढ़ावा देती है और उसको कंट्रीब्यूट करती है। ये छोटे छोटे से उद्योग हैं शहरों में, रूरल एरियाज में, तो इनके काफी एक तरीके से बहुत से यूनिट्स ऐसे ही जगहों में हैं। दूसरा अगर आप देखें तो कई स्मॉल इनोवेटिव यूनिट्स हैं, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और वो लोगों की स्किल भी डेवलप करते हैं, और उससे क्या होता है जो लार्ज इंडस्ट्रीज में एक तरीके से उनको एक बेनिफिट मिलता है कि उनको स्किल मैन पावर मिलता है। तीसरा जो है उनके सारे जो एंसिलरी इंडस्ट्री होते हैं वो लार्ज कंपनीज के, वो रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज, जॉब वर्क्स वगैरह करते हैं, और जो लार्ज कंपनीज है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो ना केवल एक्सपोर्ट्स में 45% देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के लिए और देश के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इम्पोर्ट्स की भी डिपेंडेंस रिड्यूस करते हैं। तो ये जो अगर आप देखें, तो मैं रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें अगर देखें बहुत कम लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल और यूपी में ज्यादा संख्या में एमएसएमई यूनिट्स हैं, वो काफी छोटे छोटे शहरों में है। तो एमएसएमई एक जो है पूरे देश की एक इंजन ऑफ ग्रोथ है, और छोटे शहर और गाँव में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो जो हमें शहर में दिखने के लिए भी नहीं मिलते, लेकिन उनके रूरल और वो लोकल इकोनॉमीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
प्रधानमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को भारत के मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
भारत के मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बैकबोन हमारे एमएसएमई सेक्टर है। 2020 में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज करने का बड़ा फैसला लिया था, ऐसा 14 साल बाद किया गया। हमारे इस फैसले से एमएसएमई का ये डर खत्म हुआ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सरकार से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। आज देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है, इसे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इस बजट में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को फिर विस्तार किया है ताकि हमारे एमएसएमई को निरंतर आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस मिले।
क्या कहेंगे मिस्टर चिनॉय, जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है एमएसएमई की, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि ये क्या पहलू है और उससे क्या फायदा हुआ है, और इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप प्रमुख मानते हैं जो एक बल मिला है एमएसएमई सेक्टर्स को पिछले कुछ सालों में?
पहले जो है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन जो था 2020 में रिवाइज किया गया था। ये आत्मनिर्भर अभियान के बीच में उनको एक तरह के स्कोप वाइडन किया था तो बेनिफिट्स दें। इस बजट में जो क्या था कि जो माइक्रो स्मॉल में था, जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था, वो 25 लाख था और 10 लाख सर्विसेज का, ये प्री 2020 का है, और इसको ले गया था 1 करोड़ और 5 करोड़ अभी टर्नओवर में, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो पहले 5 करोड़ था और 2 करोड़ था, अभी उसको 10 करोड़ और 50 करोड़ ले लिया गया टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट में, और मीडियम का 10 करोड़ और 10 करोड़ से 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट ले लिया। इसका बेनिफिट ये है, अगर आप देखें कि जो लिमिट्स थे उनको, अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट अभी खत्म हो गई थी और आपके न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप दूसरी यूनिट खोलते। इसमें आपको दूसरी यूनिट की खोलने की जरूरत नहीं है, उसी यूनिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं, जैसे आपने पूछा मुद्रा लोन हो या सिडबी हो या क्रेडिट गारंटी स्कीम हो या टेंडर्स में जो 25% प्रोक्योरमेंट रिजर्व किया गया है एमएसएमई के लिए, और जो प्रोटेक्शन मिलता है एमएसएमई समाधान स्कीम, वो टाइमली पेमेंट फ्रॉम बायर्स, और जो ट्रेड प्लेटफॉर्म किया हुआ है उसका जो अनाउंस किए थे, जो नए स्कीम्स किए थे, और एक जो जीएसटी कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का किया गया था, और एक्सपोर्ट्स प्रमोशन स्कीम भी एमएसएमई के लिए काफी है। तो अगर आप देखें तो मुद्रा लोन से लेकर के ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो इस बजट में अनाउंस किया गया है, काफी बेनिफिट्स हैं एमएसएमईज के लिए, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिमिट इस बजट में और टर्नओवर लिमिट इस बजट में इंक्रीज किया है, उससे ज्यादा जो कंपनी है उस डेफिनेशन के अंदर आकर के उन बेनिफिट्स के लाभ ले सकता है।
जी, वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं किसी भी एमएसएमई के लिए। इस बजट में एमएसएमई के लोन के लिए गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए तक किया गया है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
अब हमें क्रेडिट डिलीवरी के लिए नए मोड विकसित करने होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एमएसएमई की पहुंच लो कॉस्ट और टाइमली क्रेडिट तक हो सके। महिला, एससी और एसटी समुदाय के 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर्स को 2 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर्स को सिर्फ क्रेडिट सपोर्ट ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे गाइडेंस की भी जरूरत होती है। मैं समझता हूं इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाना चाहिए।
मिस्टर शनॉय, जो मेंटरशिप प्रोग्राम की बात कही प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में बताएं कि इस लेवल पर कोलैबोरेशन के लिए कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं और इससे कितना बल मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को?
अगर आप एमएसएमई सेक्टर को देखें तो उसमें 2 या 3 और सेक्टर्स शामिल होते हैं, लेकिन हम उनको अलग एक डिफाइन करते हैं। जैसे स्टार्टअप हुआ, या जो छोटे से कंपनीज इंक्यूबेटर्स में इंक्यूबेट होते हैं, या किसी एंजल कैपिटल या वेंचर फंड में उनको फंड किया गया था। तो अगर उन कंपनियों को अगर आप देखें, जो फंडर है या जो इंक्यूबेटर है, उसमें तरीके से मेंटरशिप का एक इनबिल्ट होता है, क्योंकि उनको एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट करते हैं, और वो एडवाइजरी बोर्ड में, अगर आप एक फूड सर्विस डिलीवरी का ले लें, तो अगर वो अच्छा कुक हो लेकिन उनको मार्केटिंग का कोई जान पहचान नहीं है, तो उनका मेंटर मार्केटिंग में एक्चुअली एक तरीके से सपोर्ट देता है। ऐसे स्कीम जो थे ये स्टार्टअप वगैरह सेगमेंट में थे। जो नया जो अभी स्कीम अभी अनाउंस किया गया है, तो इसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि ये जो आज का जो बजट का जो सेमिनार था, वो उसका एक प्राइमरी फोकस जो था कि जो स्कीम जो अनाउंसमेंट्स किए गए बजट में, उसके स्कीम्स कैसे रोल आउट किए। प्रधानमंत्री का ये डायरेक्शन या सजेशन था कि क्रेडिट कार्ड स्कीम को जब आप स्कीम बना रहे हो, उसमें आप एक मेंटरशिप का भी पोर्शन जोड़ दीजिएगा, और उन्हें इंडस्ट्री को एक तरीके से सजेशन दिया और डायरेक्ट किया है कि भाई आपके इंटरेस्ट में होगा कि आप मेंटर्स बन करके ये जो महिला है अलग अलग वर्ग के, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उनको एक सहायता दें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जिस्टिंग अलग अलग स्कीम्स में है, उसको इस स्कीम में कैसे लेके आए, और जब स्कीम फॉर्मुलेट करेंगे तो उसमें मेंटरशिप का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा।
एक प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में बहुत ही अस्थिरता से रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, चाहे वो जीएसटी द्वारा हो, डिजिटाइजेशन द्वारा हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया गया है। और जैसा आपने भी बताया कि एमएसएमईज जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, सो ये जो स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसका हवाला देते हुए उन्होंने स्टेक होल्डर से कहा जो एमएसएमईज में है कि वो ज्यादा बोल्ड स्टेप्स लें, घबराए ना कि पॉलिसी एकदम चेंज हो जाएगी, और नए आयाम ढूंढे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ये जो उन्होंने आश्वासन दिया है ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ताकि यहाँ पर जो एक निवेश है उसमें बढ़त हो और जो ऊर्जा है वो पूरी विकासशील हो, उसमें किसी भी प्रकार का डर ना हो?
जब भी कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट या कोई बजट पेश किया जाता है तो पहले ही जो था एक तरीके से एक एंटिसिपेटरी सिचुएशन होता था इंडस्ट्री में कि क्या पॉलिसी चेंज होगी, कोई बैक ट्रैकिंग होगी या कुछ चेंज होगा, हमारे बिजनेस पे क्या एक तरीके से इम्पैक्ट होगा। अगर आप पिछले बजट देखें, 10 बजट 11 बजट देखें आप, 2014 से जो बजट इस सरकार ने जो पेश किया, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे आज कि एक कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म हुआ है, कोविड के द्वारा भी जब परिस्थिति काफी मुश्किल थे उस टाइम भी एक पूरे रिफॉर्म प्रोसेस में एक कंटिन्यूटी थी। उन्होंने यह कि जन विश्वास पहला स्कीम आया था, अब दूसरा स्कीम कर रहे हैं, 40,000 रेगुलेशंस को एक तरीके से रद्द कर दिया था। इस बजट में उन्होंने एक कमिटी बनाई है कि आगे जाकर के और सुधार लेके आ सकते हैं, एक नया टैक्स कोड लाए हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो आश्वासन है कि ये एक कंटिन्यूटी होगा, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होगा और हमारे सारे जो पॉलिसीज है डेवलपमेंटल होंगे और देश और इंडस्ट्री के हित में होंगे, और आप पॉलिसी और सपोर्ट की चिंता ना करिए, आप अपने मार्केट्स जो बाहर है उस पर ध्यान दिए, उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो उनमें ग्लोबल डिमांड है, जो आप आसानी से यहाँ बना सकते हो, और अगर आपको टेक्नोलॉजी और R&D या कुछ करना हो तो वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, और आप जाके ग्लोबल अनसर्टेनिटी में इंडिया का जो अभी अच्छा स्थान है उसका फायदा उठा करके आप जरा एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे।
तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है प्रधानमंत्री ने, सजेशंस भी मांगी हैं, जो एक्शनेबल स्ट्रेटजीज हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, बजट में जो भी प्रावधान आए हैं उनके लिए उसके भी सुझाव मांगे हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जैसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हम कहते हैं इसमें, होल ऑफ इकोनॉमी अप्रोच, इससे आपको लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो और भी बेहतर होंगे?
बिल्कुल, एमएसएमईज जो है जैसे वेस्ट बंगाल और यूपी में है वगैरह, अलग अलग स्टेट्स में डिफाइंड है, उन्होंने जब वो अपना भाषण एंड कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पता है कि काफी स्टेट्स के लोग यहाँ पे प्रेजेंट है और आपको कम्पीट करना चाहिए जो आपस में जो सबसे बेनिफिशियल और सबसे अच्छा एनवायरमेंट इंडस्ट्री के लिए लाएंगे और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लाएंगे, वहीं पे ही इंडस्ट्री एक तरीके इन्वेस्ट करेगी और आपके स्टेट का भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। तो ये उन्होंने एक तरीके से स्टेट्स को भी कोलैबोरेट करने के लिए एक तरीके रास्ता बताया था। और दूसरा जो है इंडस्ट्री के साथ और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, कि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, वो भी नोट कर रहे हैं, एक फुल कोलैबोरेटिव जैसे आपने कहा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ इंडिया अप्रोच, स्टेट्स, इंडस्ट्री और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको लेकर के इस एमएसएमई सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जाए और पूरे जो प्रोग्राम्स अनाउंस किए उनमें कंटिन्यूटी रखे, और जो इन्वेस्टर है और जो करंट बिजनेसमैन है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सेस टू क्रेडिट और एबिलिटी टू इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट का एक तरीके का प्रोग्राम बनाए।
हमारी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए एमएसएमई सेक्टर के महत्व और भविष्य की संभावनाओं पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चिनोय।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विकास के इंजन के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनोय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।